यूनिट सेकंड पाठ पाँच प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की भूमिका रोल ऑफ हेडमास्टर एंड टीचर शिक्षक तथा प्रधानाचार्य की भूमिका तथा उत्तरदायित्व। प्राचार्य शिक्षा संस्था का नेता होता है और उसका प्रमुख स्थान होता है। विद्यालय प्रशासन तथा प्रबंध का मुख्य घटक होता है। इसके मुख्य दो उत्तरदायित्व होते हैं, प्रशासन करना तथा पर्यवेक्षण करना। उसका शिक्षण अधिगम की क्रियाओं से लगाव होता है। विद्यालय को प्रशासन एवं प्रबंधन की सभी क्रियाओं, पाठ्यक्रम, शिक्षकों, विधियों, प्रविधियों, सहायक क्रियाओं, सहायक सामग्री आदि की व्यवस्था करनी होती है। किसी विद्यालय की कार्यकुशलता, गुणवत्ता, विद्यालय का स्तर तथा वातावरण प्राचार्य के व्यक्तित्व, वृत्ति, दक्षता तथा कार्यकौशल पर निर्भर करती है। विद्यालय का शैक्षिक प्रारूप, अनुशासन व्यवस्था तथा प्रबंधन का नियंत्रण प्राचार्य की प्रबंधन कुशलता का परिणाम होता है। विद्यालय का व्यवस्थात्मक पर्यावरण प्राचार्य के व्यक्तियों का प्रतीक होता है। केवल प्राचार्य के बदलने से विद्यालय का पर्यावरण बदल जाता है। विद्यालय का सामाजिक तथा भावात्मक पर्यावरण प्राचार्य उत्पन्न करता है और कक्षा का सामाजिक भावात्मक वातावरण शिक्षक उत्पन्न करता है। विद्यालय के पर्यावरण में शिक्षक तारों के समान और प्राचार्य चंद्रमा के समान कार्य करता है। संपूर्ण विद्यालय के वातावरण को प्रकाशित करता है। प्राचार्य को पीसी रेन पानी के जहाज के इंजन की उपमा दी जाती है, जो संपूर्ण विद्यालय का संचालन गतिशील रखता है। विद्यालय का स्वास्थ्य तथा चरित्र प्राचार्य के वृत्तिक प्रतिबद्धता का परिणाम होता है। विद्यालय को लाख और प्राचार्य को सील मोहर की उपमा दी जाती है। लाख पर जैसी मोहर लगाई जाती है, वही उस पर अंकित हो जाता है। प्राचार्य विद्यालय का प्रशासक होता है। वह नेता, नियंत्रक, उद्योग निदेशक, प्रबंधक, समन्वयक, अधीक्षक, परामर्शदाता, निर्देशक, शिक्षक, अभिभावक तथा वित्त नियंत्रक आदि होता है। इसी प्रकार आज के संदर्भ में शिक्षक, निर्देशक, दार्शनिक, मित्र तथा प्रबंधक माना जाता है। प्राचार्य को विद्यालय में प्रशासन एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत अनेक विशिष्ट कर्तव्यों को करना होता है। इसलिए प्राचार्य अधिक तैयारी, अनुभवों तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दिन प्रतिदिन विद्यालयों की समस्याओं की जटिलता बढ़ती जा रही है। इनके समाधान में विशिष्ट दक्षता एवं कुशलता की आवश्यकता हो रही है। प्रशासनिक समस्याओं के कारण कॉजेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सामाजिक परिवर्तन तथा वैज्ञानिक व तकनीकी के विस्तार एवं विकास के परिणाम स्वरूप माता पिता व समाज की मांग भी बढ़ रही है और शिक्षा की गुणवत्ता पर तथा उपायदेयता पर अधिक बल दिया जाने लगा है कि जिससे प्राचार्य के उत्तरदायित्व भी बढ़ गए हैं। विद्यालयों के आकार अर्थात छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सभी शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। भारतीय संविधान में सभी को शिक्षा के समान अवसर का प्रावधान किया है। इन तथ्यों के परिणाम स्वरूप छात्रों की प्रवृत्ति, आर्थिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा भावात्मक स्तर में भी परिवर्तन आया है। इसके अतिरिक्त छात्रों के परिवार के प्रशिक्षण, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों व मूल्यों ने विद्यालय स्तर पर प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न की हैं, जिनका समाधान सरल नहीं है। विद्यालय की विविध समस्याओं ने शिक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। पाठ्यक्रमों तथा पाठ्य वस्तु की समस्याएं, शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों की समस्याएं, पाठ्य पुस्तकों की समस्या, प्रबंधन एवं प्रशासन की समस्या, प्रशिक्षण की समस्याएं आदि। आज की आवश्यकता है कि प्राचार्य तथा शिक्षकों को इन परिवर्तन, चुनौतियों तथा समस्याओं से अवगत कराया जाए, जिससे समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान निकाल सके और विद्यालय का संचालन समुचित ढंग से कर सके। इस संदर्भ में प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला प्रमुख घटक, प्रस्तावना की पंक्तियों में प्राचार्य को विद्यालय की शिक्षा का प्रमुख घटक का उल्लेख किया जा चुका है। विद्यालय शिक्षा संचालन की धुरी प्राचार्य होता है। वह सभी क्रियाओं का परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप में व्यवस्था का तथा संचालन करता है। दूसरा मुख्य बिंदु, शैक्षिक प्रयास, प्रगति, वातावरण तथा गुणवत्ता का मुख्य बिंदु प्राचार्य होता है। विद्यालय का स्तर तथा स्वास्थ्य का निर्माता प्राचार्य। तीसरा सामूहिक नेतृत्व, ग्रुप लीडर, प्राचार्य विद्यालय की शिक्षा में छात्रों तथा विद्यार्थियों को नेतृत्व प्रदान करता है। शैक्षिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व सामूहिक रूप में प्रदान करता है। चौथा विशिष्ट स्थान, विद्यालय प्रबंधन में प्राचार्य का विशिष्ट स्थान होता है, क्योंकि उसे आव्यूहिक केंद्र के रूप में संबंध रखने पड़ते हैं। छात्र शिक्षक, प्राचार्य शिक्षक, प्राचार्य छात्र, प्राचार्य अभिभावक संबंधों में समन्वय का कार्य करना होता है। पांचवा नवीन प्रकार का नेतृत्व, विद्यालय में प्राचार्य एक आदर्श होता है। उसे सभी क्षेत्र में आधुनिकतम जानकारी होनी चाहिए, तभी वह अपने साथियों को प्रभावित कर सकता है। नवीन प्रकार के नेतृत्व के लिए आधुनिकतम शिक्षा के विकास नए आयामों तथा प्रत्ययों का ज्ञान होना चाहिए। नेतृत्व के नवीन प्रत्यय का बोध होना चाहिए। समुदाय का नेतृत्व प्राचार्य समुदाय का भी नेता होता है, इसलिए समुदाय की समस्याओं में सक्रिय भाग लेना चाहिए। समुदाय के सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यों में सहयोग देना चाहिए तथा नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। सामुदायिक स्रोतों का उपयोग विद्यालय के विकास में करना चाहिए। सातवां, वृहद भूमिका। प्राचार्य की भूमिकाओं का क्षेत्र वृहद है, इसलिए उसका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। जाति, धर्म, संस्कृति तथा समुदाय से ऊपर होना चाहिए। संकुचित दृष्टिकोण से वृहद भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता है। प्राचार्य सभी का है, उसका विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। आठवां, एक उत्तम प्रबंधक। प्राचार्य को प्रशासक तथा पर्यवेक्षक से अधिक उत्तम प्रबंधक होना आवश्यक है। प्रबंधक लक्ष्य होता है उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जाए और उत्पादन में गुणवत्ता लाई जाए और सदैव विकास तथा प्रगति की ओर प्रयत्नशील रहे। छात्रों के प्रवेश की संख्या बढ़ रही है, तब कमरों की व्यवस्था हेतु स्रोतों को उत्पन्न करें। छात्रों के परीक्षा परिणामों को उत्तम रखने का प्रयास करें। छात्रों का निष्पादन विद्यालय की गुणवत्ता का मानदंड होता है, इसलिए प्राचार्य को विद्यालय की अदा प्रक्रिया तथा पदाध्यक्षों को महत्व देना होता है। भूमिका, उत्तरदायित्व एवं कार्य में भेद, डिफरेंस अमंग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस। प्राचार्य तथा शिक्षक को भूमिका तथा कार्यों का विवेचन करने से पूर्व इनके अर्थ एवं अंतर को समझ लेना आवश्यक है, तभी इन प्रत्ययों का भली भांति बोध होगा। पहला, भूमिका। भूमिका प्रत्यय समाज शास्त्र से लिया गया है। प्रबंधन के क्षेत्र में भूमिका प्रत्यय तब हुआ जब मानवीय संबंधों को व्यवस्था में महत्व दिया जाने लगा। प्रबंध तंत्र के कार्यकर्ताओं में कार्य करने की क्षमता आज्ञा पालन के साथ मानवीय संबंधों और उनकी भावनाओं का निर्वहन करना होता है। भूमिका में विशिष्ट संबंधों का बोध होता है। समाज की तथा परिवार की भूमिकाओं हेतु व्यवहार मानक निर्धारित किए गए हैं। पिता की भूमिका विशिष्ट व्यवहारों से संपादित होती है। माता पिता के संबंधों में भूमिका निर्वहन होता है और बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। भूमिका से संबंधों का बोध होता है। दूसरा, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व प्रत्यय प्रबंधन से लिया गया है। प्रबंधन के संपादन, नियोजन, व्यवस्था, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में सम्मिलित व्यक्तियों को उत्तरदायित्व को सौंपा जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उत्तरदायित्वों को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे तथा प्रयासरत रहेंगे। उनके वरिष्ठ को इसकी समीक्षा करनी होती है, जिसे जवाबदेही कहते हैं। माँ का उत्तरदायित्व बालक को शिक्षा देना भी होता है। कार्य। कार्य शब्द उद्योग का है। उत्तरदायित्व का निर्वहन कार्यों के रूप में होता है, जैसे माँ का उत्तरदायित्व बालक को शिक्षा देना है। इसके लिए माँ का बालक को शिक्षा प्रद कहानियाँ सुनाती है, अच्छे आचरण तथा व्यवहार को प्रोत्साहन तथा निर्देशन प्रदान करेगी। यह माँ के कार्य कहे जाते हैं। भूमिका, उत्तरदायित्व तथा कार्य आपस में संबंधित प्रत्यय हैं, परंतु उनमें एक चढ़ाव क्रम है जिससे उनके अर्थ में अंतर है, परंतु विरोधी नहीं है। यहाँ एक चार्ट स्पष्ट किया गया है। प्राचार्य। प्राचार्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है, भूमिका एक, भूमिका दो और भूमिका तीन। भूमिका एक को संबंधों का प्रारूप एक में और भूमिका टू को संबंधों का प्रारूप दो में और भूमिका तीन को संबंधों का प्रारूप तीन में विभाजित किया गया है। संबंधों का प्रारूप एक को उत्तरदायित्व एक में, संबंधों के प्रारूप दो को उत्तरदायित्व दो में और संबंधों का प्रारूप तीन को उत्तरदायित्व तीन में विभाजित किया गया है। उत्तरदायित्व एक को कार्य 11 में, कार्य 12 में, कार्य 13 में विभाजित किया गया है और उत्तरदायित्व दो को कार्य 21 में, कार्य 22 में और कार्य 23 में विभाजित किया गया है। उत्तरदायित्व तीन को कार्य 31 में, कार्य 32 में और कार्य 33 में विभाजित किया गया है। भूमिका, उत्तरदायित्व एवं कार्य में यह संबंध है। प्राचार्य की भूमिका का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ हेडमास्टर रोल। विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य का स्थान एक पथ प्रदर्शक, निर्देशक, पर्यवेक्षक, निरीक्षक तथा एक अच्छे परामर्शदाता के रूप में होता है। उसकी सोच एवं परख में दार्शनिकता झलकती है, जबकि कर्म एवं वाणी की सहायता उसके व्यवहारों तथा निर्णयों से स्पष्ट होती है। जीवी स्पीयर्स के अनुसार प्रधानाचार्य विद्यालय की गतिविधियों से संबंधित कर्मचारियों, साधनों, वस्तुओं तथा उद्देश्यों पर नियंत्रण रखे बिना उसके विकास हेतु निर्देशन नहीं प्रदान कर सकता। प्रधानाचार्य की भूमिका संबंधी यह उक्ति सही है, जैसा प्रधानाचार्य होगा वैसा विद्यालय होगा। एज द प्रिंसिपल सो विल बी द इंस्टीट्यूशन। विद्यालय के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य सभी कार्यकर्ताओं को सामाजिक करना, समायोजित करना होता है। साथ ही विद्यालय अभिलेख, प्रबंधन, वित्त, कार्यालय, भवन, पुस्तकालय आदि सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है। प्रधानाचार्य का कार्य विभिन्न कार्यों संबंधी निर्देशन देना, उचित निर्णय देना तथा सही मूल्यांकन की व्यवस्था करना है, ताकि विद्यालय का बहुमुखी विकास किया जा सके। W.M. रायबर्न के अनुसार, जिस प्रकार जहाज में कैप्टन का मुख्य स्थान होता है, उसी प्रकार विद्यालय में मुख्य अध्यापक या प्राचार्य का स्थान मुख्य होता है। मुख्य अध्यापक समन्वय स्थापित करने का साधन है और समूची संस्था के संतुलित विकास को निश्चित बनाता है। वह स्कूल का स्वरूप स्थापित करता है। वह उन परंपराओं को स्थापित करने का सशक्त साधन है जो समय के साथ पनपती हैं और विकसित होती रहती हैं। द हेडमास्टर होल्ड्स द की पोजीशन इन ए स्कूल जस्ट एट द कैप्टन ऑफ द शिप होल्ड्स द की पोजीशन ऑन अ शिप। द हेडमास्टर इज द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी विच कीप्स द बैलेंस एंड इंश्योर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द होल इंस्टीट्यूशन। ही सेट द टोन ऑफ द स्कूल and is the chief force in molding the traditions which develop as time goes on। अतः विद्यालय के कार्यकलापों में प्रधानाचार्य का चरित्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित होता है। पीसी रेन के अकॉर्डिंग, महोदय ने बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है कि घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है। स्कूल का चरित्र प्राचार्य के चरित्र को ही प्रतिबिंबित करता है। वह मुहर के समान है और स्कूल लाख के समान है। वह संगठन करता है, नेता है, कार्य निर्देशक है, संयोजक है, अध्यक्ष है, अध्यापक है, दार्शनिक और मित्र है। व्हाट द मेन स्प्रिंग इज टू द वॉच द फ्लाई व्हील टू द मशीन आर द इंजन टू द स्टीमशिप द हेडमास्टर इज टू द स्कूल। द कैरेक्टर ऑफ द स्कूल रिफ्लेक्ट द प्रोक्लेम्स द कैरेक्टर ऑफ द हेडमास्टर। He is the seal and school is the wax. He is the organizer, leader, governor, business director, coordinator, superintendent, teacher, guide, philosopher and friend. इस प्रकार प्राचार्य विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय तब ही प्रगति कर सकता है तब जब वह सभी का सहयोग प्राप्त कर सके। जसवंत सिंह के मतानुसार विद्यालय का मुख्य अध्यापक या प्राचार्य शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु है। एक प्रभावशाली नेता के रूप में उसी की योग्यता पर ही विद्यालय पद्धति में सफलता निर्भर करती है। द हेडमास्टर आर प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल इज द सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस ऑन हिज एबिलिटी एंड स्किल्स एज अ साउंड एंड इफेक्टिव एजुकेशनल लीडर डिपेंड द सक्सेस ऑफ ए स्कूल सिस्टम। सेना के संबंध में एक विख्यात कहावत है, सेना निम्न कोटि की नहीं होती बल्कि सेनापति निम्न कोटि के होते हैं। यही बात स्कूलों के लिए भी सत्य है। देयर आर नो पुअर रेजिमेंट बट ओनली पुअर कॉलोनीज। सो इज इट विद द स्कूल ऑल्सो। माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशनल कमीशन के अनुसार समाज में स्कूल की ख्याति तथा स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्राचार्य का विद्यालय के अध्यापकों, विद्यार्थियों और उनके माता पिता तथा सामान्य पर कितना प्रभाव है। प्रधानाचार्य वह बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था घूमती है। अध्यापक, अन्य कर्मचारी, विद्यार्थी, माता पिता सभी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। अतः उसमें कुछ मानसिक एवं बौद्धिक गुण होने चाहिए। केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन के अनुसार शिक्षा संस्था की किसी भी योजना का तब तक वांछित परिणाम नहीं निकल सकता जब तक उसका प्रशासन कुशल और योग्य न हो। प्राचार्य की भूमिका, रोल ऑफ हेडमास्टर। विद्यालय की शिक्षा में प्राचार्य का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय के कार्यों में विविधता अधिक होने के कारण प्राचार्य को अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। यहाँ पर प्राचार्य की प्रमुख भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है। पहला, प्रशासक की भूमिका, दूसरा पर्यवेक्षक की भूमिका, तीसरा प्रबंधक की भूमिका, चौथा निर्देशक सेवाओं में निर्देशक की भूमिका, पांचवा शिक्षक की भूमिका, छठवा प्रबंध समिति के सचिव की भूमिका, सातवा परीक्षा अधीक्षक की भूमिका, आठवा वित्त नियंत्रक की भूमिका, नौवा समन्वयक की भूमिका, दसवां शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका। प्राचार्य को उपरोक्त भूमिकाओं के अंतर्गत विविध व्यवहारों के प्रारूपों का उपयोग करना होता है। प्रत्येक भूमिका में विशिष्ट प्रकार के संबंध रखने पड़ते हैं जिससे उत्तरदायित्वों का प्रारूप निर्धारित होता है तथा कर्तव्यों का बोध होता है। इस प्रकार प्राचार्य अपने उत्तरदायित्वों के कार्यों का संपादन करता है। प्राचार्य अपने उत्तरदायित्व के
अधिकता के कारण वरिष्ठ शिक्षकों को उत्तरदायित्वों को सौंप देता है। शिक्षकों को उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना होता है। इस प्रकार प्राचार्य अपने कार्यों को शिक्षकों के सहयोग से पूरा करता है। प्राचार्य द्वारा स्कूलों के छात्रों की क्रियाकलापों को उपयोगी बनाने संबंधी प्रमुख भूमिका। आज के युग में विद्यालय के प्रत्येक छात्र को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना होगा ताकि छात्र अनुशासित, उत्साही एवं सशक्त कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक कार्य कर सके, साथ ही सार्वजनिक रूप में उत्तरदायित्व को भी निभा सके। इसका मुख्य उत्तरदायित्व प्राचार्य के स्कूल संबंधी छात्रों के विविध क्रियाकलापों पर निर्भर करता है कि वह किस रूप में छात्रों को सामाजिक रूप से उपयोगी धारा के अंतर्गत सम्मिलित कर सके। इसके लिए स्कूलों की एक नवीन संरचना करनी होगी। इसका समस्त उत्तरदायित्व प्राचार्य पर माना जाता रहा है। जेसी पार्कर महोदय ने प्राचार्य द्वारा स्कूलों के छात्रों संबंधी उपयोगी कार्यकलापों को अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहला, प्राचार्य द्वारा स्कूल के छात्रों की संख्या निश्चित करना। दूसरा, छात्रों के वर्गीकरण संबंधी नीतियों का निर्धारण करना। तीसरा, छात्रों के अनुशासन संबंधी नीतियों का निर्धारण करना। चौथा, छात्रों को उचित निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था करना। पांचवा, छात्रों के अनुशासन संबंधी नीतियां बनाना। छठवा, छात्रों के कक्षा उन्नति रिकॉर्ड आदि सभी को समयबद्ध करना। सातवां, छात्रों के स्वास्थ्य, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सूची तैयार करना तथा उनका योजनाबद्ध समयबद्ध रूप से कराना। आठवां, छात्रों के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों हेतु तैयार करना। अतः यह कथन सत्य है कि महान प्रधानाचार्य छात्रों के बड़े अच्छे मित्र होते हैं। ग्रेट प्रिंसिपल्स आर हेडमास्टर हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ देयर पीपल। वास्तव में प्राचार्य का यह प्रमुख उत्तरदायित्व होता है कि वह विद्यालय के छात्रों हेतु इस प्रकार प्रभावी, उपयोगी एवं योजनाबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करें ताकि छात्रों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप में समुचित उपयोगी हो सके। वीएस झा के शब्दों में, एक अच्छा मुख्य अध्यापक या प्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं होता बल्कि वह एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है। उसे विद्यार्थियों से गहरी सहानुभूति होती है। वह विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझता है और उनके साथ व्यवहार करने की उसमें पर्याप्त युक्ति होती है। वह विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत होता है और जानता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। A good headmaster or principal is not merely a scholar, he is a man of good character, has deep sympathy and understanding and considerable tact and experience in dealing with pupils, spiritual needs of pupils and know how to administer them. अतएव प्रधानाचार्य का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करे जो कि छात्रों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी रूपों में पूर्ण रूपेण उपयोगी सिद्ध हो सके। इस प्रकार प्रधानाचार्य को निम्नलिखित कार्य को कराना आवश्यक है। पहला, छात्रों को गतिशील नेतृत्व प्रदान करना, डायनामिक लीडरशिप। इसके अंतर्गत प्रधानाचार्य में अपने छात्रों को गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब उसमें एक सुयोग्य नेता के सभी गुण विद्यमान हो। उसमें दूसरों से काम लेने की योग्यता होनी चाहिए। इस संदर्भ में रायबर्न के मतानुसार अपने सहयोगी समूह के नेता के रूप में मुख्य अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखे। यदि उसे अंधों का अंधा नेता नहीं बनना तो उसे शिक्षा संबंधी आंदोलनों, भारत तथा अन्य देशों में हो रहे शिक्षा प्रयोगों, मनोविज्ञान तथा पैरा मनोविज्ञान के नवीन विचारों से भली भांति परिचित होना चाहिए जो अपने सदस्यों तथा शिक्षण व्यवसाय का आधुनिक शिक्षा विचारों तथा अभ्यासों का परिचय प्रदान करती है। दूसरा, छात्रों के सामाजिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को विभिन्न सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके लिए स्कूलों में राष्ट्रीय सामाजिक सेवा, NSS, गौर शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा, छात्रों को समुचित मार्गदर्शन एवं परामर्श देना। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को विषय के चयन, रोजगार आदि संबंधी परामर्श उनकी योग्यता, अभिरुचि एवं रुचि के आधार पर प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि छात्रों को मार्गदर्शन एवं परामर्श समुचित रूप में दिया जा सके। चौथा, विभिन्न स्कूली योजनाओं की व्यवस्था करना। प्रधानाचार्य के द्वारा विद्यालय में सामूहिक जीवन विकसित करने हेतु विभिन्न स्कूली योजनाओं की व्यवस्था छात्रों द्वारा करने पर बल देना चाहिए। इसमें स्कूल की सफाई, श्रमदान, साक्षरता प्रसार आदि कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। पांचवा, छात्रों में परस्पर सहयोग एवं प्रेम की भावना का विकास करना। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों में परस्पर प्रेम, सहयोग, मित्रता, सहानुभूति आदि भावनाओं का विकास करना चाहिए। प्रत्येक कार्य मिलजुल कर पारस्परिक सहयोग से पूरा कर सके। छठा, खेल टूर्नामेंट उत्सव एवं अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल में छात्रों के सामाजिक विकास हेतु खेल प्रतियोगिताएं टूर्नामेंट उत्सव नाटक गोष्ठियों मेले सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा सभी छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। सातवां, छात्रों में आत्मविश्वास एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। प्रधानाचार्य के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक कार्यों संगठन निरीक्षण आदि कार्यों में छात्रों को भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए। आत्मा, छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना। प्रधानाचार्य के द्वारा छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जैसे शारीरिक जांच, दवाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन, खेल कूद, व्यायाम, मित्र तैरना, छुट्टी शिविर, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, भ्रमण एवं यात्राएं, कैंप आदि। नौवां, छात्रों में स्वस्थ परंपराओं का विकास करना। छात्रों में सामूहिक जीवन के विकास हेतु प्राचार्य को स्वस्थ परंपराएं डालनी चाहिए। जैसी परंपराएं विद्यालय में होंगी उसी प्रकार का छात्रों में सामूहिक जीवन विकसित होगा। दसवां, विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाना। प्रधानाचार्य के द्वारा विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। इसके लिए सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा प्रद भाषण आदि पर बल दिया जाना चाहिए। ग्यारहवां, छात्र संघ की भावना का विकास करना। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों में संघ की भावना का विकास करना भी परम आवश्यक है। इस दृष्टि से छात्र संघ की स्थापना करनी चाहिए। छात्र संघ द्वारा छात्रों में एकता, नेतृत्व, परस्पर सहित सेवा, सहयोग, प्रेम आदि गुणों का विकास होता है। पर्यवेक्षकीय कार्य में प्रधानाचार्य की भूमिका। विद्यालय के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुशल व योग्य प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रधानाध्यापक अनेक गुणों में युक्त, योग्य व परामर्श व्यक्ति होना चाहिए। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के महत्व के संबंध में पीसी रेन ने लिखा है कि एक घड़ी में जो उसके मुख्य स्प्रिंग का स्थान है तथा मशीन में जो पहिए का स्थान है अथवा पानी के जहाज में जो स्थान इंजन का है, विद्यालय में वही स्थान प्रधानाध्यापक का है। रायकर्ण के अनुसार विद्यालय में प्रधानाचार्य का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए प्रधानाध्यापक के संबंध में यह कथन कहा जाता है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय रूपी पहिए की वह धुरी है जिसके चारों ओर पाठशाला के समस्त कार्यक्रम चक्कर लगाते हैं। एक सफल व योग्य प्रधानाध्यापक वह होता है जो शिक्षालय के पर्यवेक्षकीय कार्य को सफलतापूर्वक कर सके। विद्यालय के पर्यवेक्षक कार्यों में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक में कुछ विशिष्ट योग्यताओं का होना आवश्यक है। कुछ प्रमुख योग्यताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, विद्यालय में होने वाले समस्त कार्यों का निरीक्षण करने हेतु प्रधानाध्यापक में पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, प्रधानाध्यापक को पर्यवेक्षणीय संबंधी समस्त कार्यों में धैर्य, सही पूर्णता व उदारता का पालन करना चाहिए। तीसरा, प्रधानाध्यापक को विद्यालय से संबंधित प्रत्येक कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए। चौथा, विद्यालय की उन्नति तथा विकास हेतु विद्यालय में कार्यरत अन्य अध्यापकों को प्रेरित करना चाहिए। पांचवा, विद्यालय में कर्मठ व कुशल अध्यापकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। छठवां, विद्यालय में पाठ्य सहकामी क्रियाओं हेतु उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सातवां, प्रधानाध्यापक को विद्यालय के विभिन्न कर्मचारियों में कार्य का उचित विभाजन करना चाहिए। आठवां, प्रधानाचार्य के निर्देशन, भाषण व कक्षा पर्यवेक्षण प्रभावशाली होना चाहिए। नवां, प्रधानाचार्य को विद्यालय बजट तथा कार्यालय के रजिस्ट्रों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यथा समय उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। दसवां, विद्यालय के योग्य व उत्तम कार्य करने वाले शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित कर उन्हें कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ग्यारहवां, प्रधानाध्यापक को विद्यालय की प्रगति हेतु अध्यापकों व अभिभावकों हेतु नवीन विचारों का आदर करें और उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए। बारहवां, विद्यालय के समय समय पर विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए जो कि विद्यालय की प्रगति में सहायक हो सके। तेरहवां, प्रधानाध्यापक को विद्यालय की प्रगति तथा अन्य कार्यों के संचालन हेतु अध्यापकों की योग्यताओं व रुचि के अनुसार विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। चौदहवां, विद्यालय के छात्रावास का प्रबंध प्रधानाचार्य द्वारा होना चाहिए। पंद्रह, शिक्षण व अधिगम के मूल्यांकन हेतु प्रधानाध्यापक को उचित तथा पर्याप्त समय निश्चित करना चाहिए। सोलह, प्रधानाचार्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, इसके साथ ही वह कुशल संगठनकर्ता भी होना चाहिए। निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका, रोल ऑफ प्रिंसिपल इन गाइडेंस सर्विसेज। विद्यालय में प्रधानाचार्य का मुख्य स्थान होता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य के स्थान के बारे में पीसी रेन ने लिखा है, घड़ी में प्रधान कमानी, मशीन अथवा चलियान में यांत्रिकरण का जो स्थान है वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाचार्य का है। What the main spring is to the watch, the flywheel is to the machine, or the engine is to steam ship. The headmaster in the school, P.C. Rain, किसी भी विद्यालय की प्रगति उस विद्यालय के प्रधानाचार्य की सूझबूझ, प्रशासकीय क्षमता एवं योग्यता पर निर्भर करती है। निर्देशन प्रक्रिया को शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया है, अतः निर्देशन के क्षेत्र में प्रधानाचार्य का नेतृत्व प्राप्त होना आवश्यक है। प्रधानाचार्य विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम का प्रशासकीय प्रधान होता है। अत्यधिक कार्यभार किसी भी योग्य शिक्षक को सौंप सकता है, लेकिन अपने समर्थन तथा नेतृत्व को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंप सकता। अतः प्रधानाचार्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने समस्त सहयोगी शिक्षकों को निर्देशन कार्य हेतु प्रोत्साहित कर सके, समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराए। प्रधानाचार्य के निर्देशन कार्यक्रम व संबंध उत्तरदायित्व, विद्यालय का मुख्य अधिकारी प्रधानाचार्य होता है, अतः वही विद्यालय की समस्त क्रियाओं को सफलता के साथ करने के लिए उत्तरदायी होता है। निर्देशन कार्यक्रम विद्यालय के कार्यक्रम का ही अंग होता है, अतः प्रधानाचार्य के निर्देशन कार्यक्रम निर्वाह में प्रमुख उत्तरदायित्व अग्रलिखित है। पहला, परामर्श सेवा हेतु उत्तम भवन की व्यवस्था करना। दूसरा, निर्देशन कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था करना। तीसरा, छात्रों के अभिभावकों को निर्देशन सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना। चौथा, निर्देशन कार्यक्रम प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने हेतु शिक्षकों को सहयोग प्राप्त करना। पांचवा, निर्देशन समिति का गठन करना। छठवा, विद्यालय में निर्देशन संबंधी क्रियाओं का निरीक्षण करना। सातवा, निर्देशन कार्य हेतु समुचित समय देना। आठवा, निर्देशन सेवाओं के गठन में अपना नेतृत्व प्रदान करना। नौवां, विद्यालय में विद्यालय के शिक्षकों को निर्देशन का महत्व, समस्याएं तथा उद्देश्य को समझने में सहयोग प्रदान करना। दसवां, विद्यालय में योग्य एवं कुशल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना। ग्यारहवां, नियुक्ति निर्देशन कार्यकर्ताओं के मध्य कार्य का वितरण करना। बारहवां, निर्देशन कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों को नौकरी के मध्य प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना। शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन पत्रिका में प्रधानाचार्य के महत्व के संबंध में लिखा गया है। प्रधानाचार्य अर्थात मुख्य अध्यापक अपने विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम का प्रधान व्यक्ति होता है। उसको उनके छात्रों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और अपनी हार्दिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। समस्याओं निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज की बदलती हुई परिस्थितियों के मतानुसार प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाचार्य को निर्देशन की आवश्यकता को अनुभूति करना चाहिए। निर्देशन हेतु उपलब्ध सामग्री एवं साधनों के आधार पर ही प्रधानाचार्य को निर्देशन कार्यक्रम की योजना का निर्माण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे विद्यालय में एक निर्देशन समिति का भी गठन करना चाहिए, जिसका प्रमुख अधिकारी वह स्वयं ही होगा। निर्देशन समिति तथा समय निर्देशन में योग्य क्रिया की उपयोगिता का निर्धारण मूल्यांकन के माध्यम से करेगी। निर्देशन में योग्य एवं रुचि रखने वाले शिक्षकों को भी निर्देशन समिति का सदस्य बनाना चाहिए। सेवारत शिक्षकों को निर्देशन कार्य का प्रशिक्षण देने हेतु नौकरी वालों की शिक्षा का आयोजन भी प्रधानाचार्य द्वारा किया जाना चाहिए। इस कार्य हेतु प्रधानाचार्य को विभागीय बैठक आयोजित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह निर्देशन कार्यक्रम हेतु समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करे। निर्देशन हेतु विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था कर उसमें पर्याप्त फर्नीचर भी रखे तथा निर्देशन हेतु समस्त प्रकार की सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि की भी व्यवस्था करें। हमारे देश में धन के अभाव के कारण विद्यालयों में समस्त प्रकार की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। विद्यालय कार्य के समान ही प्रधानाचार्य को निर्देशन क्रियाओं का भी परीक्षण करना चाहिए तथा परामर्शदाता द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों इत्यादि में परिवर्तन करने के लिए उसे तैयार करना चाहिए। प्राचार्य को प्रतिभाशाली और विशिष्ट बालकों की पहचान मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा करना चाहिए और उन छात्रों को उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षण की अलग व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालक राष्ट्र की भावी शक्ति होती है। प्राचार्य का अन्य व्यक्तियों से संबंध, उपरोक्त पंक्तियों में प्राचार्य की विभिन्न भूमिकाओं का विवरण दिया गया है। भूमिका शब्द समाज शास्त्र का है। भूमिका से संबंधों का बोध होता है और व्यवहारों का प्रारूप सुनिश्चित होता है। जैसे समाज में पिता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे उसके संबंध पुत्र पुत्री से सुनिश्चित होते हैं और व्यवहारों का प्रारूप भी समाज के मानकों के अनुसार होता है, जिससे पिता का उत्तरदायित्व और कर्तव्य भी निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार प्राचार्य की विद्यालय के संदर्भ में एक अहम भूमिका है, जिसका उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। यह प्राचार्य की भूमिका के संदर्भ में संबंधों को विवेचन किया गया है। यह प्राचार्य को विविध प्रकार के संबंधों का स्थापित करना होता है। संबंधों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला अध्यापकों से संबंध, दूसरा छात्रों से संबंध, तीसरा समुदाय तथा अभिभावकों से संबंध, चौथा राज्य शिक्षा विभाग से संबंध, पांचवा शिक्षा परिषद या विद्यालय से संबंध, छठवां प्रबंध समिति से संबंध। इन संबंधों का विवरण निम्नांकित संख्या में किया गया है। पहला अध्यापकों से संबंध। विद्यालय प्रबंध में प्राचार्य का मुख्य उत्तरदायित्व यह होता है कि विद्यालय का वातावरण प्रभावशाली तथा सीखने के योग्य हो। इसके लिए प्राचार्य का व्यक्तित्व तथा उसकी कार्य क्षमता पर निर्भर होता है। इसमें यह आवश्यक होता है कि प्राचार्य अपने सहयोगियों से अच्छे संबंध स्थापित करें। सामान्य स्तर के शिक्षकों के साथ विद्यालय के अंतर्गत वरिष्ठ शिक्षक प्राचार्य की शैक्षिक योग्यता के ही होते हैं, परंतु उन्हें प्राचार्य की आज्ञाओं का पालन करना होता है। फिर भी प्राचार्य को इन योग्य शिक्षकों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और उनके विचारों एवं सुझावों का आदर करना चाहिए। विद्यालय को समस्याओं में उनकी परामर्श करनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। विद्यालय की नीति निर्धारण में उन्हें सहभागी बनाया जाए, जिससे वह विद्यालय शिक्षा में रुचि लेने लगे और विद्यालय को अपना समझने लगे। प्राचार्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठ शिक्षक स्वतः ही विद्यालय के कार्य में संचालन को संभाल लें। वह अन्य शिक्षक तथा कर्मचारियों के साथ प्राचार्य का व्यवहार प्रजातांत्रिक होना चाहिए। उनसे यही अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि जो प्राचार्य उन्हें आदेश देगा उसमें वह प्रश्न नहीं करेगा, अपितु उनका अनुपालन करेंगे। यदि कोई प्रश्न करता है तो प्राचार्य उस स्थान पर ध्यान देगा और उस पर विचार करके अपने आदेश में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार के आचरण से प्राचार्य सभी से अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है। शिक्षकों तथा कर्मचारियों की कठिनाई और उनकी समस्याओं में अपना पूर्ण सहयोग तथा सहायता करनी चाहिए। शिक्षकों की कठिनाई को प्राचार्य अपनी कठिनाई समझे। इस तरह के संबंध और व्यवहार से विद्यालय का सामाजिक और भावात्मक वातावरण सजीव होगा और कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण एवं रुचि का विकास होगा। प्राचार्य को अपने शिक्षकों, कर्मचारियों तथा सहयोगियों में भी भावना का विकास करना चाहिए, जिससे उन्हें अपने व्यक्तिगत समस्याओं व कठिनाइयों को उसके समक्ष रखने में कोई संकोच न हो और खुलकर प्रधानाचार्य से अपनी बात कह सके। प्राचार्य को अपने सहयोगियों से भी सीखने का दृष्टिकोण रखना चाहिए। दूसरा छात्रों से संबंध, रिलेशनशिप विद पीपल्स। प्राचार्य छात्रों से संबंध तीन माध्यमों से बनाता है, और छात्रों से प्रत्यक्ष संपर्क व छात्र संघ से संपर्क तथा छात्रों की पहुंच। और छात्रों से प्रत्यक्ष संपर्क, इसके अंतर्गत प्राचार्य की तरफ से छात्रों से संपर्क करने की पहल होती है। विभिन्न अवसरों पर प्राचार्य छात्रों के संपर्क में आता है और उनसे शिक्षण संबंधी चर्चा करता है, उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करता है। उदाहरण, छात्रावास में उनको खाना समय पर मिलता है अथवा नहीं, खाने की गुणवत्ता कैसी होती है, पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध है उपाधि है अथवा नहीं, उनकी कक्षाएं नियमित चल रही है अथवा नहीं आदि। छात्र संघ, साधारणतः विद्यालयों में शिक्षा परिषद तथा शिक्षा संघ होता है, जिनका कार्य समय समय पर छात्रों की समस्याएं, कठिनाइयों और सुविधाओं के संबंध में प्राचार्य से मिलते हैं और अपनी कुछ मांगे भी रखते हैं। प्राचार्य को उनकी बात को ध्यान में सुनकर यदि उनकी मांगे तथा कठिनाइयां वास्तविक हैं तो उनमें सुधार या समाधान का प्रयास करना है। विद्यालय के संचालन में विद्यार्थियों का भी सहयोग प्रधानाचार्य को लेना चाहिए, जैसे कक्षा मॉनिटर, मुख्य छात्र प्रीफेक्ट तथा अनुशासन समिति में छात्र सदस्य का होना आदि। सर, छात्र की पहुंच। छात्र संबंधों के लिए यह आवश्यक है कि प्राचार्य का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता पर प्राचार्य से सीधा संपर्क करके अपनी बात कह सके और प्राचार्य को उनकी बात को सुनकर उसका समाधान करना चाहिए। यदि छात्र को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो छात्र कोष से प्राचार्य समुचित सहायता प्रदान करें। तीसरा, समुदाय तथा अभिभावकों से संबंध। छात्र व शिक्षकों के संबंध के अतिरिक्त प्राचार्य को अभिभावकों तथा समुदाय से भी संबंध स्थापित करने होते हैं, क्योंकि विद्यालय प्रशासन में इनकी सहयोग की भी आवश्यकता होती है। यह संबंध दो प्रकार के होते हैं, पहला अभिभावकों से संपर्क तथा दूसरा व्यक्तिगत संपर्क। पहला, अभिभावकों से संपर्क। छात्रों की समस्याओं व कठिनाइयों तथा परामर्श के लिए अभिभावक प्राचार्य से संपर्क करते हैं। इस संदर्भ में प्राचार्य को उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उन्हें समुचित आदर सम्मान भी दिया जाना चाहिए। उनकी कठिनाइयों को सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास तथा आश्वासन देना चाहिए। यदि छात्र कोई अनुशासनहीनता कर रहा है तब भी प्राचार्य को उसके अभिभावक से संपर्क करके उससे सहयोग की अपेक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार अभिभावकों से दोनों ओर से संपर्क करने से संबंध स्थापित होते हैं। वह व्यक्तिगत संपर्क प्राचार्य को विद्यालय के संचालन में समुदाय की आवश्यकताओं को समझने के लिए प्राचार्य को व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने होते हैं, जिससे अनौपचारिक रूप से बात करने पर वास्तविकताओं का बोध होता है और विद्यालय में उसके अनुसार परिवर्तन तथा सुधार करने का प्रयास करता है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो प्राचार्य व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करता है तथा उनका सहयोग प्राप्त करता है। चौथा, राज्य शिक्षा विभाग से संबंध, रिलेशन विद स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। प्राचार्य को राज्य स्तर पर तीन कार्यों के लिए संबंध रखने पड़ते हैं और मान्यता के लिए व अध्यादेश द्वारा परिनियमावली के लिए राजकीय अनुदान के लिए मान्यता हेतु। प्राचार्य का कार्य केवल विद्यालय शिक्षा का प्रशासन तथा प्रबंध करना ही नहीं, अभी संस्था विकास करना भी प्राचार्य का उत्तरदायित्व तो होता है। यदि विद्यालय 10वीं कक्षा तक है तो इंटर कक्षाओं के लिए राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करनी होगी। यदि नए विषय को आरंभ किया है तो उसके लिए भी प्राचार्य को राज्य शिक्षा विभाग से ही मान्यता प्राप्त करने के लिए संबंध स्थापित करने होंगे। अच्छे संबंध होने पर विद्यालय के विकास में सहायता मिलती है। दूसरा, अध्यादेश तथा परिनियमावली। शिक्षा का अनुपालन राज्य सरकार का विषय है, इसलिए शिक्षा के अध्यादेश तथा नियमावली राज्य शिक्षा विभाग से पारित होते हैं। साधारणतः यदि कोई नई परिनियमावली या अध्यादेश पारित हुआ है तो उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक विद्यालय को भेज दी जाती है। विद्यालय में कोई वैज्ञानिक समस्या आने पर इनकी सहायता ली जाती है, इसलिए उनके स्पष्टीकरण के लिए राज्य शिक्षा विभाग से इस पर संपर्क करने के लिए प्राचार्य को संबंध स्थापित करने होते हैं। अच्छे संबंध होने पर नवीन परिवर्तन की प्रतिलिपियां प्राप्त होती रहती हैं और स्पष्टीकरण भी शीघ्र मिल जाते हैं। तीसरा, राजकीय अनुदान। विद्यालय की शिक्षा का संचालन राजकीय वित्तीय अनुदान से होता है और जो छात्रों से फीस ली जाती है, इसमें अधिकांश भाग राज्य कोष में जमा होता है। शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए अनुदान के लिए प्राचार्य को राज्य शिक्षा विभाग से संपर्क करना होता है और उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने होते हैं, जिससे शिक्षकों तथा कर्मचारियों को भुगतान समय अनुसार मिलता रहे। पांचवा, शिक्षा परिषद या विद्यालय से संबंध, रिलेशन विद बोर्ड ऑफ एजुकेशन आर यूनिवर्सिटी। विद्यालय में अंतिम परीक्षा शिक्षा परिषद अथवा परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। उत्तर पुस्तिकाएं, प्रश्न पत्र विद्यालय को परीक्षा बोर्ड से प्राप्त होते हैं और परीक्षा की व्यवस्था प्राचार्य को करनी होती है। यह क्रिया प्रतिवर्ष होती है और इसके लिए प्राचार्य को परीक्षा बोर्ड से संपर्क करना होता है और अच्छे संबंध स्थापित होने पर परीक्षा के संचालन में सुविधा रहती है और परीक्षा केंद्र भी बना रहता है। छठवां, प्रबंध समिति से संबंध, रिलेशन विद मैनेजमेंट कमेटी। विद्यालय संचालन में प्रबंध समिति की अहम भूमिका होती है। प्रबंध समिति का प्राचार्य सचिव होता है, वह प्रबंध समिति की बैठक की व्यवस्था करता है। समिति के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनका प्राचार्य क्रियान्वयन करता है। समिति के निर्णय के समय नियमों तथा अध्यादेशों की जानकारी प्राचार्य देता है। इस प्रकार प्राचार्य का प्रबंध समिति से निकट का संबंध होता है और अच्छे संबंध होने पर प्राचार्य को विद्यालय के संचालन में कोई कठिनाई नहीं होती है। विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन समिति प्रपत्रों पर प्राचार्य के हस्ताक्षरों के उपरांत समिति के मंत्री के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं, तभी वह प्रपत्र वैध माने जाते हैं। विद्यालय निरीक्षक तथा राज्य स्तर पर तभी इन प्रपत्रों पर विचार किया जाता है। प्राचार्य के मुख्य कार्य, बेसिक फंक्शंस ऑफ हेडमास्टर। प्राचार्य को अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों के निर्वहन में कार्यों को स्वयं करना होता है तथा शिक्षकों का सहयोग लेना होता है। प्राचार्य के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षण कार्य की व्यवस्था एवं संचालन करना। दूसरा, विद्यालय का शैक्षिक वातावरण समुचित करना। तीसरा, विद्यालय के लक्षणों का निर्धारण करना। चौथा, शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करना। पांचवा, वृत्तिक प्रशिक्षण तथा ज्ञान साधारण करना। छठवां, विद्यालय के कार्यों में सभी का सहयोग प्राप्त करना। सातवां, विद्यालय के कार्यों में सभी का सहयोग प्रदान करना। आठवां, सभी का विश्वास प्राप्त करना। नवां, सभी छात्रों तथा अभिभावकों से सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना। दसवां, अपने उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों को सौंपना तथा ग्यारहवां, स्वस्थ शरीर का होना तथा छात्रों के स्वस्थ का ध्यान रखना। इन कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित पंक्तियों में दिया गया है। पहला, शिक्षण कार्यों की व्यवस्था एवं संचालन। विद्यालय की शिक्षा में प्राचार्य का मुख्य कार्य शिक्षण कार्यों का आयोजन करना और समुचित रूप से संचालन करना है। समय तालिका निर्माण करके शिक्षकों को अवगत कराना, जिसे कक्षा तथा कालांश के अनुसार शिक्षण कार्य को करें। शिक्षक की अनुपस्थिति में अन्य शिक्षकों को कार्य सौंपना। शिक्षण कार्यों के संचालन का पर्यवेक्षण करना। शिक्षक तथा छात्रों की कठिनाइयों के अनुसार समय तालिका में परिवर्तन करना। समय तालिका कक्षागत तथा शिक्षक को तैयार की जाती है। दूसरा, विद्यालय का शैक्षिक वातावरण को समुचित रखना। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण पठन पाठन के अनुकूल होना चाहिए। विद्यालय का प्रांगण स्वच्छ होना चाहिए। वातावरण शांत होना चाहिए ताकि सभी अपने कार्यों संलग्न रहें। शिक्षण अवधि में छात्रों को कक्षा से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभी छात्र एवं शिक्षक विद्यालय में समय से पहुंचे जिससे विद्यालय का वातावरण समुचित रह सके। अभिभावकों से संपर्क हेतु भी समुचित व्यवस्था तथा परामर्श कक्ष होना आवश्यक होता है। तीसरा, विद्यालय के लक्ष्यों का निर्धारण करना। विद्यालय अथवा संस्था के विकास के प्रति प्राचार्य कितना जागरूक है, यह इससे विदित होता है कि प्राचार्य विद्यालय के विकास हेतु नए लक्ष्यों का प्रतिपादन करके उनके लिए प्रयत्नशील रहता है। विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना तथा शिक्षकों को प्रोत्साहित करना जिससे नए आयामों तथा स्रोतों का सर्जन करे। विद्यालय के विकास में सभी के सहयोग से प्राचार्य नए लक्ष्यों का निर्धारण करता है। विद्यालय के विकास में प्राचार्य तथा शिक्षकों की प्रतिबद्धता होना चाहिए, तभी आदर्श विद्यालय बनाया जा सकता है। नए लक्ष्यों के निर्धारण में समुदाय की आवश्यकताओं, उपलब्ध स्रोतों तथा साधनों को ध्यान में रखना होगा। समुदाय का सहयोग भी विकास में आवश्यक है। प्राचार्य में नेतृत्व के गुण तथा व्यक्तित्व बहुयामी होना चाहिए। प्राचार्य को परिवर्तन के लिए शिक्षकों तथा समुदाय की मानसिकता बनानी होगी, जो परिवर्तन को सरलता से स्वीकार नहीं करते उनका विरोध अधिक होता है। तीसरा, शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करना। शैक्षिक नेतृत्व के लिए अब चिंतन ने चार सूत्र दिए हैं: और कार्य को जानना, और परिस्थिति को समझना, द अनुसरण करने वालों की जानकारी तथा द अपने को पहचानना। इनके वित्तीय सूत्र में विद्यालय संगठन व्यवस्था की परिस्थितियों को सम्मिलित किया है। इस सूत्र में प्रथम सूत्र पूरक कार्य करता है। जब तक कार्य का बोध एवं कौशल नहीं होगा तब तक उसकी व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं की जा सकती है। अनुभव तथा अभ्यास से ही शुद्ध ज्ञान होता है। नेता अर्थात प्राचार्य को यह भी समझना आवश्यक है कि उसके कितने अनुयायी हैं जो उसका साथ देंगे अथवा सहयोग करेंगे। अंतिम सूत्र अधिक महत्वपूर्ण है। उसे अपने को भली प्रकार और वास्तविक रूप से समझना चाहिए। अधिकांश व्यक्तियों में अपने संबंध में भ्रम ही रहता है। एक नेता को अपनी पहचान होना आवश्यक है, तभी वह अपने कार्य में सफल हो सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण अथवा ज्ञान प्रदान करना। विद्यालय की शिक्षा में शिक्षण वृत्ति के महत्व अधिक होते हैं, इसलिए सभी शिक्षकों को अपनी वृत्ति का ज्ञान होना चाहिए तथा प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए प्राचार्य को अभिविन्यास पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए, सेमिनार तथा कार्यशालाओं आयोजन करना चाहिए जिससे शिक्षकों को वृत्ति प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्राप्त हो सके, साथ ही शिक्षण में नए आयामों तथा नवाचार से अवगत हो सके। छठवां, विद्यालय के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। यह प्राचार्य की भूमिका तथा कार्य दोनों ही हैं। विद्यालयों के संचालन में पर्यवेक्षण का विशेष महत्व है। आज विद्यालयों के आकार इतने बड़े हो गए हैं कि प्राचार्य को सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करना संभव नहीं होता, इसलिए वरिष्ठ शिक्षकों को विभिन्न कार्यों का उत्तरदायित्व तथा अधिकार सौंप दिया जाता है। फिर भी प्राचार्य कभी कभी पर्यवेक्षण करता है। आज आधुनिक उपकरणों की सहायता से प्राचार्य विद्यालय के संचालन का अपने कमरे में बैठे बैठे अवलोकन कर लेता है तथा दिशा निर्देशन भी करता है। साथवां, विद्यालय के कार्यों में सभी का सहयोग करना। विद्यालय शिक्षा के कार्यों में प्राचार्य को सभी का सहयोग आवश्यक होता है, इसलिए इसके लिए प्राचार्य को शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन तथा अभिप्रेत करना होता है, उनकी आवश्यकताओं तथा कठिनाइयों को ध्यान में रखना होता है जिससे उनका विद्यालय कार्यों में लगाव हो और विद्यालय सभी का है ऐसी भावना विकास का किया जाए। इस कार्य प्राचार्य का होता है और वह सभी सहयोग प्राप्त कर सकता है। प्राचार्य का व्यवहार पक्षपात रहित होना चाहिए।
आठवां, सभी का सहयोग प्राप्त करना। यह कार्य भी सहयोग का पक्ष है। प्राचार्य के सभी कार्य सकारात्मक होने चाहिए। अपने सहयोगियों की कमजोरियों पर ध्यान न देकर उन्हें विकास की ओर उन्मुख करना चाहिए। प्राचार्य के कार्य ऐसे होने चाहिए जिससे विरोधी भी यह अनुभव करने लगे कि वह अहित नहीं करेंगे। उन्हें उनकी गलतियों की अनुभूति सकारात्मक कार्यों तथा दृष्टिकोण से कराई जा सकती है। प्राचार्य उनका भी विश्वास प्राप्त कर सकता है। नौवां, सभी से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। प्राचार्य को छात्रों, शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों तथा अभिभावकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनकी कठिनाइयों तथा समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जहां तक संभव हो उनका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। यदि उनके अधिकार से बाहर है तो असमर्थता व्यक्त करनी चाहिए तथा परामर्श भी दिया जा सकता है। प्राचार्य के पास जो भी आता है कोई आशा लेकर आता है, इसलिए निराश नहीं किया जाए। सहयोग, विश्वास तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार परस्पर समीप है तथा पूरक भी है। दसवां, अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को सौंपना। विद्यालय संचालन के लिए यह कार्य प्राचार्य हेतु अधिक महत्वपूर्ण है। प्राचार्य अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को वरिष्ठ शिक्षकों को सौंप देता है, जिससे प्राचार्य की अनुपस्थिति में भी विद्यालय का संचालन यथावत होता रहता है। इससे प्रशासन में विकेंद्रीयकरण आयाम का अनुपालन भी होता है, प्राचार्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, प्राचार्य को विद्यालय विकास के कार्यों के लिए समय में मिल जाता है। 11वां, स्वस्थ शरीर का होना। प्राचार्य की भूमिकाएं उत्तरदायित्वों, अधिकारों, कार्यों तथा जवाबदेही का क्षेत्र इतना वृहद है कि स्वस्थ व्यक्ति ही प्राचार्य के कार्यों का संचालन तथा संपादन कर सकता है, छात्रों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकता है। इसके लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हार्ट ने प्रशासन के 7 गुणों का उल्लेख किया है। यह 7 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, विद्यालय शिक्षा में अपनी कार्य प्रणाली की व्यवस्था की योग्यता से स्थान बना लेना। दूसरा, विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था प्रणाली ऐसी हो जो समुदाय तथा छात्रों को प्रभावित कर सके। तीसरा, विद्यालय की शिक्षा में अकुशलता का सुधार इस प्रकार किया जाए जिससे संस्था के प्रति लगाव बना रहे। चौथा, विद्यालय के कार्यों का प्राचार्य द्वारा और सुधार हेतु 7 सुझाव दिए जाएं। पांचवां, विद्यालय शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक शिक्षक तथा कर्मचारी अच्छा अनुभव करें। छठवां, विद्यालय प्रणाली में प्रत्येक को उसकी प्रगति में सहायता प्रदान की जाए जिससे अपना विकास कर सके। सातवां, विद्यालय प्रणाली में प्रशासक तथा पर्यवेक्षक के साथ कार्य करने में प्रसन्नता का अनुभव करें। इनकी समीक्षा कुछ शब्दों में की जा सकती है। पहला, कर्तव्य की अनुभूति। दूसरा, सहानुभूति। तीसरा, निर्णय शक्ति। चौथा, सूत्र की शक्ति। पांचवां, कार्य से लगाव। छठवां, आत्मनियंत्रण। सातवां, दृढ़ता। आठवां, संगठन की शक्ति। नौवां, अभिव्यक्ति की क्षमता तथा 10वां, विद्यालय से प्रतिबद्धता। प्राचार्य के विद्यालय प्रशासन एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। विद्यालय के विकास हेतु प्रधानाचार्य द्वारा निम्नलिखित प्रशासकीय एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्य किए जाते हैं और प्राचार्य द्वारा परिवीक्षण भी किया जाए। पहला, शिक्षा क्रियाओं संबंधी कार्य। दूसरा, शिक्षकों संबंधी कार्य। तीसरा, छात्र वर्ग संबंधी कार्य। चौथा, विद्यालय प्रबंधन संबंधी कार्य। पांचवां, वित्त संबंधी कार्य। छठवां, विद्यालय कार्यालय संबंधी कार्य। सातवां, विद्यालय भवन तथा अन्य साधनों संबंधी कार्य तथा 8वां, विद्यालय स्वास्थ्य संबंधी कार्य। इन कार्यों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। पहला, शैक्षिक क्रियाओं संबंधी कार्य। शिक्षण क्रियाओं के रूप में प्रधानाचार्य द्वारा पाठ्यक्रम का चयन करना, शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री की व्यवस्था करना, मूल्यांकन करना, निर्देशन देना आदि कार्य किए जाते हैं ताकि विद्यालय का चहुमुखी विकास किया जा सके। दूसरा, शिक्षकों संबंधी कार्य। विद्यालय के समस्त कार्यों की सफलता तथा असफलता उसके शिक्षकों पर निर्भर होती है। शिक्षक ही केवल वह साधन है जो स्कूल को गतिशील बनाए रखता है। इसके बिना विद्यालय सुने बना रहता है। अतः प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों को मार्गदर्शन व परामर्श देना, उन्नति के अवसर प्रदान करना, कार्यभार संतुलित करना, सभी सुविधाएं देना तथा कार्य का मूल्यांकन करना आदि कार्य किए जा सकते हैं। तीसरा, छात्र वर्ग संबंधी कार्य। आज के युग में विद्यालय प्रशासन का यह प्रमुख कार्य है कि वह प्रत्येक छात्र को ऐसे उत्तरदायी, स्व अनुशासित, उत्साही तथा एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में तैयार करे जो अपने परिवार, समाज, राजनीति तथा जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य कर सके। इस प्रकार प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को उचित निर्देशन एवं परामर्श देना, उनकी संख्या निश्चित करके कक्षा तथा विषय आदि में दर्ज करना, प्रगति संबंधी रिकॉर्ड तैयार करना, परीक्षा व उपयुक्त मूल्यांकन की व्यवस्था, समुचित अनुशासन की व्यवस्था करना, छात्र वर्गीकरण के लिए नीतियां बनाना, पिछड़े छात्रों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करना एवं वित्तीय सहायता देना आदि कार्य किए जाते हैं। चौथा, विद्यालय प्रबंधन संबंधी कार्य। हेनरी स्वेलिन महोदय के अनुसार विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख कार्य शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग स्थापित करना है। अतः विद्यालय प्रबंधन का मार्गदर्शन उत्तम शिक्षक छात्र सहयोग पर ही आधारित होता है। इन्हें ही प्रशासन का उत्तम साधन माना गया है। इस प्रकार प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय प्रबंधकों को उचित निर्देशन व सलाह प्रदान करना, प्रबंधन संबंधी नीतियों को निश्चित करना, शिक्षक संघ का गठन करना, विकास संबंधी समितियों का गठन करना, उपलब्धि की जाने हेतु एक संयोजक की नियुक्ति करना आदि कार्यों को पूरा किया जाता है। पांचवा, वित्त संबंधी कार्य। मार्गेट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में केवल लेखा जोखा रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस धन से अधिकतम शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करनी है। यह केवल उचित प्रशासन द्वारा ही संभव है। इस प्रकार प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय वित्तीय योजना का निर्माण करना, आय व्यय का बजट बनाना, लेखा जोखा का विवरण रखना, सभी कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करना, आय व्यय का मूल्यांकन करना, प्रबंधन समिति के सभी मदों का विवरण रखना, वित्तीय विभाग व शिक्षा विभाग से संबंध रखना तथा वित्त के अनुसार कार्यों की व्यवस्था करना आदि विशेष कार्य किए जाते हैं। छठवां, विद्यालय कार्यालय संबंधी कार्य। कार्यालय द्वारा विद्यालयों की समस्त गतिविधियों को विकसित किया जाता है, जिसका संबंध सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं में रहता है। अतः उत्तम कार्यालय ही उत्तम विद्यालय का निर्माण करता है। इसी के द्वारा विद्यालय की प्रगति को आंका जाता है। इस प्रकार प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालय का निरंतर ऑडिट कराना, सभी वित्तीय रिकॉर्डों की जांच करना, वार्षिक व अर्धवार्षिक सहायता प्रतिवेदनों का निरीक्षण करना, वित्त संबंधी उचित परामर्श प्रदान करना, आय व्यय संबंधी रूपरेखा तैयार करके देना आदि कार्य किए जाने चाहिए। वार्षिक बजट भी प्रधानाचार्य ही तैयार करता है। सातवां, विद्यालय भवन तथा अन्य संबंधी कार्य। मार्केट के अनुसार विद्यालय भवन निर्माण पर कुल बजट का 20% व्यय किया जाना चाहिए। अतः प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में आधुनिक अध्ययन कक्षों का निर्माण करना, पुस्तकालय व संग्रहालय की व्यवस्था करना, खेल कूद का मैदान तथा व्यायामशाला की व्यवस्था, दृश्य श्रव्य कक्ष, प्रयोगशालाएं, कैंटीन, सहकारी दुकान तथा पुस्तक डिपो की व्यवस्था, शिक्षक व छात्र संघ के कक्षों की व्यवस्था, प्राचार्य शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के आवास भवनों की व्यवस्था, छात्र हॉस्टल आदि कार्यों को पूरा किया जाता है। आठवां, विद्यालय संबंधी स्वास्थ्य संबंधी कार्य। आधुनिक समय में स्कूली स्वास्थ्य की और अपेक्षाकृत अधिक ध्यान आकर्षित हो रहा है। वास्तव में यह सभी के द्वारा मान्य है कि बालक के व्यवहार, योग्यता, क्षमता पर शिक्षा के अंतर्गत उसके स्वास्थ्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः विद्यालय प्राचार्य द्वारा शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन कराना, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का आयोजन करना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, छुट्टी, शिविर, प्रदर्शन, भ्रमण यात्राएं तथा कैंप की व्यवस्था कराना, बैठने की सीट, वाचनालय, पीने का पानी, शौचालय व पेशाब घर, प्रकाश आदि विभिन्न कार्यों को किया जाना चाहिए। प्राचार्य के प्रबंधन में कार्य, फंक्शंस ऑफ हेडमास्टर इन मैनेजमेंट। संसार में गिने चुने ही व्यक्ति हैं जिनके उत्तरदायित्व तथा कार्य प्राचार्य अधिक हो। यह कथन सत्य है कि राष्ट्र का निर्माण न तो विधानसभा तथा संसद, न ही किसी कारखाने तथा उद्योग में होता है, जबकि राष्ट्र के भाग्य तथा राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षा में होता है। भावी समाज का निर्माण विद्यालय में होता है, जबकि समाज तथा राष्ट्र प्राचार्य के उत्तरदायित्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यह स्वाभाविक है, प्राचार्य अपने कार्यों से राष्ट्र का निर्माण करता है। प्राचार्य प्रथम कर्तव्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कराना है। समाज तथा राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों को प्राप्त करना, आदर्शों का अनुसरण करना तथा मानकों का अनुपालन करना, जिससे अपेक्षित समाज को तैयार कर सके। प्राचार्य विद्यालय की शिक्षा को नेतृत्व प्रदान करता है। इसके लिए प्राचार्य को प्रबंधन में निम्नलिखित कार्यों को करने से उत्तरदायित्व का निर्वहन होता है। मुख्य कार्य 5 प्रकार के हैं। पहला, नियोजन का कार्य, प्लानिंग फंक्शन। दूसरा, व्यवस्था कार्य, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तीसरा, प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रिंग फंक्शन। चौथा, पर्यवेक्षण या निर्देशन कार्य, सुपरवाइजिंग एंड डायरेक्टिंग फंक्शन। पांचवा, मूल्यांकन या नियंत्रण कार्य, इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन। इन प्रमुख प्रबंधन के कार्यों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। नियोजन के कार्य के रूप में, प्लानिंग एज ए फंक्शन। शिक्षा संस्था के प्राचार्य का कर्तव्य होता है कि वह विद्यालय की शिक्षा का नियोजन करे, विद्यालय के विभिन्न कार्यों के संपादन से पूर्व उनका नियोजन करे। नियोजन में कार्यों के उद्देश्यों, कार्यों तथा क्रियाओं व उत्तरदायित्वों का विवरण तैयार किया जाए। विद्यालय की शिक्षा का वर्ष या सत्र का पूर्ण नियोजन करना चाहिए। पूरे वर्ष के नियोजन को 4 स्तरों में करना चाहिए। यह स्तर इस प्रकार हैं। पहला, विद्यालय के खुलने से पूर्व, बिफोर री ओपनिंग ऑफ द स्कूल। इस स्तर पर प्राचार्य को निम्नलिखित कार्यों का नियोजन करना होता है। पहला, ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात विद्यालय खुलने की तिथि की घोषणा की जाती है। विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि जिस तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सके। कुछ कक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की तिथियां तथा परीक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर सभी सूचनाओं को अंकित किया जाता है। यदि संभव हो सके तो समाचार पत्र में भी विज्ञापन दे दिया जाता है। दूसरा, प्रवेश के नियमों तथा प्रक्रिया को तैयार किया जाता है। इसके लिए एक प्रवेश समिति का गठन किया जाता है, जिसका उत्तरदायित्व प्रवेश प्रक्रिया का संपादन करना तथा पूरा करना होता है। कक्षा में छात्रों की संख्या भी सुनिश्चित की जाती है। प्रवेश संबंधी समस्याओं का प्रवेश समिति ही समाधान करती है। तीसरा, प्राचार्य के विद्यालय के फर्नीचर तथा साज सज्जा की भी व्यवस्था करनी होती है। अन्य संसाधन उपकरण तथा पुस्तकों का भी पुस्तकालय में आयोजन करना होता है। टूटे हुए फर्नीचर को ठीक कराना होता है। प्राचार्य इन कार्यों का उत्तरदायित्व वरिष्ठ अध्यापकों को सौंप देता है और अधिकार भी दे देता है। चौथा, विद्यालय में आवश्यक सामग्री उपस्थित रजिस्टर, डायरी, चौक, डस्टर, श्यामपट आदि की व्यवस्था करता है। पांचवा, प्राचार्य विद्यालय शिक्षा सत्र का कैलेंडर भी तैयार करता है, जिससे पूरे सत्र क्रिया, अन्य कार्यक्रमों तथा अवकाश की तिथियों का विवरण दिया जाता है। छठवां, आवश्यकता अनुसार शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां भी करता है। कार्यालय संबंधी रजिस्ट्रों की भी व्यवस्था की जाती है। सातवां, विद्यालय भवन कुताई तथा टूट फूट को ठीक कराता है। फर्नीचर की पॉलिश भी कराता है, जिससे नए सत्र में विद्यालय भवन नया सा दिखाई दे। विद्यालय का भौतिक पर्यावरण छात्रों के लिए आकर्षक लगना चाहिए। दूसरा, विद्यालय के खुलने के दिन, ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द स्कूल, प्राचार्य को विद्यालय के खुलने के दिन के कार्यों का नियोजन करना होता है। विद्यालय के खुलने के प्रथम सप्ताह विद्यालय में निम्नांकित कार्यों का आयोजन किया जाता है। पहला, शिक्षकों की विषयगत, छात्रों की कक्षागत तथा शिक्षण कक्षों की अनुसूची तैयार की जाती है। दूसरा, शिक्षकों को कार्यों का वितरण कर दिया जाता है। शिक्षकों को कार्यों के वितरण में निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाता है। अ, शिक्षकों को अभिरुचियों तथा पूर्व अनुभवों का। ब, शिक्षकों की शैक्षिक योग्यताओं का। तथा स, शिक्षकों पर समान कार्यभार। अ, शिक्षकों की अभिरुचियों तथा पूर्व अनुभवों। प्राचार्य को शिक्षकों को विद्यालय के कार्य का उत्तरदायित्व सौंपते समय उन अभिरुचियों तथा अनुभवों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी स्वेच्छानुसार भी कार्य दिया जा सकता है, तभी शिक्षक उस कार्य को कुशलता से कर सकेगा। ब, शैक्षिक योग्यताएं। शिक्षकों की रुचियों के अतिरिक्त उनकी शैक्षिक योग्यताओं को भी ध्यान में रखा जाए, तभी शिक्षकों की योग्यताओं तथा क्षमताओं का विद्यालय की शिक्षा को लाभ मिल सकता है। शिक्षक की वास्तविक योग्यताओं के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स, शिक्षकों को समान कार्यभार। प्राचार्य को शिक्षकों को कार्य वितरण में पक्षपात नहीं करना चाहिए। उनका प्रयास यह होना चाहिए कि शिक्षकों का कार्यभार समान हो। असमान कार्यभार वितरण से शिक्षकों को असंतोष होता है और वह कार्य में रुचि नहीं लेते हैं। शिक्षकों को अपने कार्यों का नियोजन भी करना चाहिए। तीसरा, शिक्षकों को अपने कार्यों का नियोजन भी करना चाहिए। चौथा, शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो शिक्षकों द्वारा प्राचार्य की भी सहायता ली जा सकती है। यदि शिक्षण सामग्री नहीं है, उसकी व्यवस्था प्राचार्य को करनी है, वह शिक्षक का अधिकृति भी कर सकते हैं। पांचवा, विद्यालय की भौतिक सुविधाओं के अनुसार उनकी समुचित व्यवस्था करनी होती है। छठवां, छात्रों को विद्यालय सभा तथा अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। विद्यालयों की परंपराओं तथा नियमों से परिचित करना चाहिए। सातवां, छात्रों को उनके पाठ्यक्रमों से संबंधित पुस्तकों की सूची दी जाती है। तीसरा, विद्यालय के शिक्षण सत्र की अवधि, ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन ऑफ स्कूल, प्राचार्य विद्यालय के शिक्षण सत्र की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्यों का नियोजन करता है। पहला, शिक्षण कार्यों के संचालन की व्यवस्था तथा नियोजन करना। दूसरा, शिक्षण सहायक सामग्री तथा क्रियाओं हेतु योजना तैयार करना। तीसरा, परीक्षण तथा मूल्यांकन की व्यवस्था तथा कार्यक्रम तैयार करना। चौथा, बाह्य विशेषज्ञों के प्रवचनों का आयोजन करना तथा समय समय पर उन्हें आमंत्रित करना। पांचवा, परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाओं, कक्ष निरीक्षकों तथा कमरों की व्यवस्था करना। छठवां, छात्रों के शैक्षिक आलेखों को तैयार करना तथा उनकी जांच करना। सातवां, विद्यालय के छात्रों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक सेवाओं का नियोजन करना। आठवां विद्यालय में सूचना प्रसारण की व्यवस्था करना, नौवां प्रबंधन समिति की बैठकों का नियोजन करना, दसवां शिक्षा विभाग से पत्राचार तथा पत्र व्यवहार की व्यवस्था करना, चौथा विद्यालय के शैक्षिक सत्र के अंतिम चरण में ऑन द एंडिंग ऑफ द एजुकेशन सेशन ऑफ स्कूल, विद्यालय के शैक्षिक सत्र के अंतिम चरण में प्राचार्य को निम्नांकित कार्यों तथा क्रियाओं का नियोजन करना होता है। पहला खेल कूद, वार्षिक प्रतियोगिता, अभिभावक दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारितोषक वितरण आदि का नियोजन करता है। दूसरा छात्रों का वार्षिक परीक्षा फल तैयार करना तथा परीक्षा फल की व्यवस्था करना। तीसरा छात्रों की फीस, उपस्थिति आदि के लेखा जोखा की जांच करना। चौथा उच्च कक्षा में प्रोन्नति के लिए नियम निर्धारण करना। पांचवा आगामी शैक्षिक सत्र के संबंध में तैयार करना, जिससे उसमें आवश्यक सुधार कर लिया जाए, जिससे विद्यालय की शिक्षा का विकास हो सके। दूसरा प्रशासन कार्य के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फंक्शन, विद्यालय की शिक्षा हेतु प्रबंधन समिति जो उद्देश्य, नियम, योजनाएं, कार्यक्रम आदि निर्धारित करती हैं, उन सभी का क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व प्राचार्य को होता है। नियोजन के अंतर्गत भी आयोजन तथा निर्णय लिए जाते हैं, उनका संपादन करना प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। जिला स्तर तथा राज्य स्तर से जो आदेश विद्यालय में आते हैं, उन सभी का अनुपालन करना तथा कराना प्राचार्य का ही कार्य तथा उत्तरदायित्व होता है। प्रशासनिक कार्यों का क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करना तथा कराना, दूसरा विद्यालय की व्यवस्था करना तथा संचालन करना, तीसरा विद्यालय के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अवलोकन करना, चौथा विद्यालय में नियुक्तियां करना, पांचवा विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, छठवां शिक्षण तथा परीक्षण कार्यों की व्यवस्था करना, सातवां शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों में समन्वय करना तथा नेतृत्व प्रदान करना, आठवां निर्णय लेना तथा समस्याओं का समाधान करना, नौवां विद्यालय की वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करना, दसवां छात्रों की परीक्षा कराना, परीक्षा फल तैयार करना तथा उनका आलेख तैयार करना, ग्यारहवां विद्यालय के स्रोतों का समुचित उपयोग करना, बारहवां शिक्षकों के विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना। प्राचार्य के उपरोक्त प्रशासनिक कार्यों के विवरण अलग अध्यायों में विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। तीसरा व्यवस्था एक कार्य के रूप में ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन, प्राचार्य का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था कराना है। इस व्यवस्था कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख चार क्रियाओं को करना होता है। पहला विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल प्लान, इसके अंतर्गत फर्नीचर, उपकरण तथा अन्य शिक्षक सहायक सामग्री जो कक्ष शिक्षण के लिए आवश्यक होती है, उसकी व्यवस्था को करना प्राचार्य का ही कर्तव्य होता है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं तथा पुस्तकालय संबंधी सामग्री की व्यवस्था करना होता है। विश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी अन्य सामग्री जैसे खेल कूद, स्काउटिंग, एनसीसी आदि संबंधी संसाधनों को भी जुटाना होता है। दूसरा अनुदेशनात्मक कार्यों की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्क, इसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों तथा समाज की आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। किन किन विषयों के शिक्षण की सुविधा विद्यालय में की जाएगी, इसकी व्यवस्था भी प्राचार्य को करनी होती है। विषयों से संबंधित शिक्षकों समय तालिका, कार्य वितरण तथा विद्यालय का कैलेंडर आदि को भी प्राचार्य द्वारा तैयार करना होता है। तीसरा अन्य क्रियाओं की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजिंग अदर एक्टिविटीज, विद्यालय के अंतर्गत शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इनसे संबंधित आवश्यकता, साधन व सुविधाओं को उपलब्ध कराना प्राचार्य का ही कार्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त छात्र संघ, शिक्षक संघ, समुदाय की क्रियाओं का संपादन प्राचार्य द्वारा ही किया जाता है। चौथा कार्यालय संबंधी क्रियाओं की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिस वर्क, इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन के रजिस्टर, डायरी, पत्राचार्य, अन्य वित्तीय आलेख, छात्रों की फीस, शिक्षकों के वेतन आदि का लेखा जोखा का नियंत्रण प्रधानाचार्य को करना होता है। चौथा पर्यवेक्षण एक कार्य रूप में सुपरविजन एज अ फंक्शन, प्राचार्य का चौथा मुख्य कार्य विद्यालय की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करना होता है। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालय व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना है। विद्यालय के अंतर्गत जिन क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है, उनका संचालन समुचित रूप से किया जा रहा है, इसके लिए प्राचार्य को पर्यवेक्षण करना आवश्यक होता है। प्राचार्य को प्रमुख रूप से चार प्रकार की क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना होता है। पहला शिक्षण कार्य टीचिंग वर्क, प्राचार्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तथा उत्तरदायित्व शिक्षण कार्य का पर्यवेक्षण करना होता है। जो विद्यालय का समय तालिका बनाई गई है उसके अनुरूप कक्षाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है अथवा नहीं, इसके लिए प्राचार्य को पर्यवेक्षण करना होता है। पर्यवेक्षण में प्राचार्य को मुख्य तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अ, प्राचार्य को पर्यवेक्षण के अंतर्गत शिक्षकों की तथा अन्य कर्मचारियों की गलतियां निकालने या गलतियां ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए कि वह अपने कार्यों को सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस संदर्भ में प्राचार्य को उनकी सहायता या सहयोग करना चाहिए। बस शिक्षण कार्यों का अवलोकन करते समय प्राचार्य को यह भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है। यदि विद्यालय में आवश्यक सहायक सामग्री नहीं हो तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सब प्राचार्य को शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए उन्हें सुझाव देना चाहिए और आवश्यकता समझें तो प्रदर्शन करके समझाया जाए। शिक्षकों और छात्रों से शिक्षण संबंधी कठिनाइयों को समझने व जानने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, छात्रावास का पर्यवेक्षण हॉस्टल सुपरविजन। यदि विद्यालय के अंतर्गत छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है तो उसकी व्यवस्था करना भी प्रधानाचार्य का कार्य होता है। प्राचार्य को प्रमुख रूप से कुछ बातों को विशेष अवलोकन करना चाहिए। पहला, छात्रावास में सफाई रहे। दूसरा, बच्चों के भोजन की समुचित व्यवस्था को देखना। तीसरा, छात्रों को अध्ययनरत रखने हेतु एक समय तालिका बनाई जाए और छात्रावास की दिनचर्या का पूरा अनुपालन हो, इसका पर्यवेक्षण प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है। तीसरा, कार्यालय आलेख का पर्यवेक्षण ऑफिस रिकॉर्ड सुपरविजन। कार्यालय को कार्यालय के आलेख की वित्तीय व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना भी महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यालय के प्रतिदिन की कैश बुक का अनुसरण किया जाए। चौथा, सामान्य पर्यवेक्षण जनरल सुपरविजन। शिक्षण कार्य, छात्रावास की व्यवस्था तथा कार्यालय के आलेख के पर्यवेक्षण के अतिरिक्त प्राचार्य को अनेक क्रियाओं को करने का उत्तरदायित्व होता है, जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं, निर्देशन, परामर्श सेवाएं, खेल कूद, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालय की कैंटीन, विद्यालय भवन, फर्नीचर आदि। पांचवा, मूल्यांकन यानी कि नियंत्रण एक कार्य रूप में, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन। आधुनिक समय में पर्यवेक्षण का अर्थ विद्यालय के क्रियाओं में सुधार का विकास करना होता है, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि विद्यालय की कार्य प्रणाली का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे विद्यालय की उपलब्धियों और सफलता का बोध हो सके। विद्यालय के मूल्यांकन से शिक्षक के निष्पादन का भी बोध होता है और छात्रों तथा शिक्षकों को एक पृष्ठ पोषण मिलता है। मूल्यांकन में सामान्यतः शिक्षकों की प्रभावशीलता, छात्रों की उपलब्धियों को ही प्राथमिकता दी जाती है, परंतु विद्यालय प्रणाली का आकलन नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रणाली विश्लेषण का उपयोग किया जाए, जिससे विद्यालय की प्रणाली का आकलन और निदान दोनों ही किए जा सके। निदान से विद्यालय प्रणाली की कमजोरियों का बोध होता है और उनमें सुधार का प्रयास किया जाता है। एक प्राचार्य को चाहिए कि विद्यालय के आकलन में उसकी प्रगति, प्रोन्नति, क्षमताओं तथा कठिनाइयों को महत्व दिया जाए। इस संबंध में निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। पहला, छात्रों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया जाए कि वह अधिक कठिन अथवा अधिक सरल तो नहीं है। दूसरा, प्रश्न पत्र के अंतर्गत समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गए हैं अथवा नहीं, इसका अवलोकन किया जाए। तीसरा, विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत मासिक परीक्षाएं या साप्ताहिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे छात्रों के अध्ययन में निरंतरता रहती है। चौथा, छात्रों की प्रगति तथा संचयी आलेख भी तैयार किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को भी प्रगति का बोध होता रहे। प्राचार्य को मूल्यांकन में नीतियों, प्रक्रियाओं तथा क्रियाओं को ही महत्व न दिया जाना चाहिए, अपितु विद्यालय की अन्य कार्य प्रणाली तथा क्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाए, जैसे अपने साथियों की अच्छाई, बुराई तथा संबंधों की भी ध्यान में रखा जाए। प्राचार्य को स्वयं भी अपनी कार्य प्रणाली का आकलन करना चाहिए, क्योंकि प्राचार्य की कार्य प्रणाली का प्रभाव सभी पर पड़ता है। प्राचार्य को आकलन के समय सकारात्मक तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मानवीय संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षक के विद्यालय में भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन द स्कूल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायक सहायता देता है। एक सच्चा अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में, एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं अभी सीख न रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक की कभी भी प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक कि उसकी अपनी ज्योति जलती न रहे। शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण, संरक्षण एवं संवर्धन का प्रमुख साधन है। अतः किसी भी देश की शिक्षा वहाँ की संस्कृति के संदर्भ में ही समझी जा सकती है। शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है और वस्तुतः वही हमारी संस्कृति के भविष्य का संरक्षक है। छात्र के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला, एक ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाकर मानवता के पथ को अवलोकित करने वाला कहा गया है। कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने भी अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है। आशय यह है कि शिक्षक सामान्य सामाजिक व्यक्ति से अधिक चरित्रवान, उदार, सहिष्णु, दयालु तथा मर्यादित होता है। शिक्षक विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है। विद्यालय में पर्याप्त संख्या में विभिन्न विषयों एवं प्रवृत्तियों के दक्ष एवं सुयोग्य शिक्षकों का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता अध्यापक के व्यवहार, योग्यता एवं कार्य प्रणाली पर ही निर्भर करती है। वर्तमान समय में अध्यापक का विद्यालय में प्रमुख स्थान माना जाता है। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षक छात्र अनुक्रिया में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूँकि शिक्षा का तात्पर्य बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से है, जिसके अंतर्गत अध्यापक का कार्य न केवल बालक का मानसिक विकास करना है वरन उसके शारीरिक, नैतिक, सांवेगिक व आध्यात्मिक एवं रागात्मक विकास में भी योगदान करना है। शिक्षक के गुण, टीचर्स क्वालिटीज। एक सफल शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला, एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर कठिनाइयों को हल करने में तत्पर रहता है। छात्रों के हित चिंतक अध्यापक लोकप्रिय होते हैं। दूसरा, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त कर सकने में सक्षम हो। तीसरा, अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ तथा चरित्रवान होना चाहिए। चौथा, एक अध्यापक में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। पांचवा, अध्यापक का समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज के कार्यक्रमों में अध्यापक को समुचित सहयोग प्रदान करना चाहिए। छठवां, अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है, जिससे कि वह बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा रुचियों, अभिरुचियों, प्रेरणाओं, योग्यताओं व क्षमताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन कर सके। सातवां, अध्यापक अध्ययनशील होना चाहिए, शिक्षण के विषय एवं विधियों में नवीनतम परिवर्तनों से परिचित होते रहने की जिज्ञासा अध्यापक में बनी रहनी चाहिए। आठवां, अध्यापक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, अर्थात उसके ज्ञान का स्तर इतना हो कि उसे पुस्तक अथवा नोट्स का दास न बनना पड़े। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। नवा, अध्यापक स्वयं अथवा अपने व्यवहारों के प्रति हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए, अपने व्यवसाय में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। दसवां, अध्यापक भावना ग्रंथियों से मुक्त होना चाहिए व आत्मविश्लेषण एवं आलोचनात्मक द्वारा अपने विकास में तत्पर होना चाहिए। ग्यारहवां, अध्यापक में सहनशीलता एवं सांवेगिक स्थिरता होनी चाहिए। बारहवां, प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक शिक्षण विधियों, बाल मनोविज्ञान एवं समस्या समाधान में दक्ष हो सकता है, अतः अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए तथा समय समय पर नवीन पाठ्यक्रम या रिफ्रेशर्स कोर्स में भाग लेते रहना चाहिए। तेरहवां, अध्यापक की रुचियां विविध होनी चाहिए, विशेषकर पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं तथा खेलकूद में अध्यापक को अपना उचित योगदान प्रदान करना चाहिए। चौथा, अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होना चाहिए, तभी वह शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता की परीक्षा करके सुधार ला सकता है। पंद्रहवां, अध्यापक में कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक शक्ति होनी चाहिए, यह उसके क्रियाकलापों में स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। सोलहवां, अध्यापक को बदलते हुए परिवेश के साथ समायोजन की क्षमता से युक्त होना चाहिए, शिक्षक को नई पीढ़ी का समायोजन करना होता है। सत्रहवां, अध्यापक सत्यवादी, सहिष्णु तथा ईमानदार होना चाहिए, इन गुणों से युक्त प्रसन्न चित अध्यापक छात्रों को बहुत ही प्रिय होता है। अध्यापक के प्रमुख कार्य, मेजर फंक्शंस ऑफ टीचर। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण वर्तमान समाज शीघ्रता से परिवर्तित हो रहा है, शिक्षण संस्थाओं का भी इसके साथ साथ परिवर्तन एवं विकसित होना आवश्यक है। विद्यालय की छवि का अभिप्राय विद्यालय कार्यक्रमों के प्रति समाज की धारणा एवं प्रतिक्रिया से है। विद्यालय की छवि प्रधान अध्यापक के कुशल नेतृत्व, अध्यापकों की प्रभावशीलता कर्मचारी वर्ग में सहयोग की भावना तथा छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में विशिष्ट उपलब्धियों आदि पर निर्भर करती है। विद्यालय की छवि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से भी संबंधित है। विद्यालय अच्छा कहा जा सकता है यदि वहाँ के शैक्षिक परिणाम श्रेष्ठ रहते हों। पाठ्येतर क्रियाएं कलापों तथा खेल कूद में यहाँ के विद्यार्थी विजेता एवं अग्रणी रहते हों। विद्यालय के छात्र शिक्षक एवं कर्मचारी अनुशासित रहकर सहयोग से कार्य करते हों। विद्यालय में समुचित भौतिक सुविधाएं तथा भवन उपकरण पुस्तकालय प्रयोगशालाएं खेल के मैदान उद्यान छात्रावास आदि सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित हों तथा विभिन्न कार्यक्रमों में सामूहिक रूप से उल्लास की भावना परिलक्षित होती हो। शिक्षक विद्यालय का मुख्य अंग है अतः विद्यालय की छवि सुधारने हेतु शिक्षक के कार्य निम्नांकित होते हैं। पहला, छात्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखकर उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में मदद करें। दूसरा, अपने छात्रों को उपयुक्त कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देकर समय से निरीक्षण करें तथा सुझाव दें। तीसरा, अध्यापक समय सारणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में जाकर शिक्षण कार्य करें। कक्षा को टटोलने या टालने की प्रवृत्ति छवि को बिगाड़ती है। दूसरा, दैनिक कार्य में अनुभूत कठिनाइयों के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तथा क्रियात्मक अनुसंधान से समस्या का समाधान करें। पांचवा, शिक्षण हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि एवं दृश्य श्रव्य आदि सामग्री का प्रयोग करें। छठवां, छात्रावास अधीक्षक के रूप में छात्रों के साथ अभिभावक का व्यवहार करें, प्रेम एवं सहानुभूति पूर्वक उचित मार्गदर्शन करें। सातवां, छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहें। आठवां, अध्यापक अनुशासन प्रिय होना चाहिए तथा छात्रों में अनुशासित करने की प्रवृत्ति विकसित करें। नवां, अध्यापकों को निजी ट्यूशन नहीं करने चाहिए क्योंकि अनेक कुरीतियां निजी ट्यूशन का ही परिणाम है। कई अध्यापक तो उत्तीर्ण कराने का ठेका तक ले लेते हैं तथा प्रश्न पत्र पहले बताने, नकल कराने, अंक बढ़ाने आदि निंदनीय कार्य में उलझ जाते हैं। कहीं कहीं यदि छात्र उत्तीर्ण नहीं होते हैं तब असम्मान का सामना करना पड़ता है। यदि ट्यूशन करना आवश्यक ही हो तो नियमानुसार सीमित संख्या में अच्छे तरीके अपना कर किया जाए, अन्यथा शिक्षक की स्वयं की तथा विद्यालय की छवि धूमिल हो जाएगी। दसवां, एक अध्यापक को दूसरे अध्यापक की अथवा विद्यालय तथा या प्रधानाध्यापक की बुराई समाज में या विद्यार्थियों से नहीं करनी चाहिए। ग्यारहवां, अध्यापक को नवीन प्रयोग करते रहना चाहिए। बारहवां, अध्यापक को अपनी योग्यता एवं क्षमता अनुसार पाठ्येतर क्रियाओं एवं खेल कूदों में सहयोग प्रदान करना चाहिए। तेरहवां, अच्छे एवं सामान्य छात्रों में विभेदीकरण करके यथोचित पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए। चौदहवां, विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी अभी आमंत्रित करना चाहिए तथा उनके समक्ष विद्यालय की प्रगति एवं योजनाओं को संतुलित रूप में रखना चाहिए। पंद्रहवां, शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन बिल्कुल निष्पक्ष एवं न्यायोचित रूप में करना चाहिए। सोलहवां, छात्रों के विकास के रूप में रुचि रखते हुए उनकी प्रगति पर गौरव का अनुभव करना चाहिए। सत्रहवां, छात्र छात्राओं में स्वस्थ सहयोग एवं प्रतिद्वंदिता का विकास किया जाना चाहिए। अठारहवां, पुरातन छात्र संघ का सहयोग विद्यालय के विकास में लिया जाना चाहिए तथा उच्च कोटि के पुरातन छात्रों के संपर्क करके उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए तथा अभिभावक अध्यापक संघ के क्रियाकलापों द्वारा विद्यालय के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन लाना चाहिए। उन्नीसवां, छात्र परिषद का गठन करके प्रजातंत्रात्मक मूल्यों के विकास में उचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्य तथा उत्तरदायित्व, द गाइडेंस फंक्शन ऑफ अ टीचर। शिक्षक अपने छात्रों को अध्यापक अनेक परिस्थितियों में कराता है क्योंकि वह उसके सर्वाधिक निकट संपर्क में रहता है। उसे छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी होती है तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का भी उसे ज्ञान होता है। अतः शिक्षक निर्देशन कार्य में अपना अधिकाधिक सहयोग प्रदान कर सकता है। शिक्षकों को निर्देशन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। पहला, छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना। दूसरा, कुसमायोजित बालकों का पता लगाना। तीसरा, अभिभावकों से संभव संपर्क स्थापित करना। चौथा, विभिन्न सामाजिक समस्याओं से संपर्क स्थापित करना। पांचवा, छात्रों को पुस्तकालय का समुचित उपयोग करना सिखाना। छठवां, विद्यार्थियों के अधिक विकास हेतु परिस्थितियों का निर्माण करना। सातवां, पाठ्योत्तर सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। आठवां, जिन छात्रों का साक्षात्कार लिया जा चुका है उसकी रिपोर्ट का निर्देशन छात्रों को प्रदान करना, नवा अपने विषय से संबंधित व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूचनाएं छात्रों को प्रदान करना, दसवां निर्देशन कार्यक्रमों को अधिक सफल बनाने हेतु प्रधानाचार्य एवं उपबोधक को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना, ग्यारहवां छात्रों की परीक्षाएं लेने में सहायता करना, बारहवां ऐसे बालकों का जो अधिगम में कठिनाई अनुभव करते हों उनकी उपबोधक के पास ले भेजना, कक्षा अध्यापक के निर्देशन संबंधी कार्य द गाइडेंस फंक्शन ऑफ अ क्लासरूम टीचर, जिस विद्यालय में कक्षा अध्यापक निर्देशन संबंधी उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता है वहां उसे अध्यापन एवं निर्देशन संबंधी उत्तरदायित्वों में विभाजन असंभव है। शिक्षक छात्रों को स्वयं की योग्यताओं को समझने के कार्यों का चयन करके स्वयं की प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। कक्षा अध्यापक तथा निर्देशन कार्यक्रम के मध्य गहन संबंध होना चाहिए। शिक्षक छात्रों का निरीक्षण मित्र भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करता है, अतः कक्षा अध्यापक शिक्षार्थियों से संबंधित कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके वह निम्नलिखित तथ्यों के संबंध में निर्देशन कार्यकर्ताओं को जानकारी प्रदान कर सकता है। पहला, कक्षा में उत्तम वातावरण पैदा करना। दूसरा, अन्य निर्देशन कार्यकर्ताओं को अपना सहयोग प्रदान करना। तीसरा, कुसमायोजित छात्रों के संबंध में पूर्ण जानकारी होना। चौथा, परामर्श प्रक्रिया का ज्ञान भी कक्षा अध्यापक को होना चाहिए जिससे वह छात्रों को व्यक्तित्व परामर्श दे सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और शिक्षक नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन 1986 एंड द टीचर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा प्रणाली को क्रियाशील बनाने पर विशेष चिंता व्यक्त की गई है, अतः वर्तमान प्रणाली में अनुशासन के समावेश पर जोर दिया गया है। इसका अर्थ होगा कि सभी विद्यार्थी पढ़े और सभी शिक्षक पढ़ाएं। यह भी कहा गया है कि सरकार और समुदाय को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिनमें शिक्षक सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित हो सके। शिक्षक को समुदाय की आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के अनुरूप क्रियाकलापों तथा संप्रेषण विधियों एवं नवाचारों के प्रयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस दृष्टि से आव्यूह के अंग हैं। पहला समुन्नत छात्र सुविधाओं की व्यवस्था तथा मानक व्यवहारों का अनुपालन पर जोर दिया जाए। दूसरा, शिक्षकों की बेहतर सुविधाएं एवं बृहत्तर उत्तरदायित्व। तीसरा, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर निर्धारित मानकों एवं आदर्शों के अनुरूप निष्पत्ति मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया जाए। चौथा, संस्थाओं में न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। इस संदर्भ में निर्धारित विशिष्ट कार्यक्रम संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षा प्रणाली को अंदर और बाहर के राजनीतिक नौकरशाह व असामाजिक तत्वों के प्रभाव से मुक्त रखा जाए। दूसरा, प्रशासन यानी कि सरकार एवं प्रबंधन शिक्षकों विद्यार्थियों तथा शिक्षा संस्थाओं द्वारा पूर्ण निर्धारित निष्पत्ति मानकों का अनुपालन अनिवार्य किया जाएगा। तीसरा, इन मानकों की अवहेलना के निश्चित परिणामों के निष्पक्ष रूप से क्रियान्वित की जाएगी। अच्छी निष्पत्ति के लिए प्रलोभन व अनिष्पत्ति के लिए प्रताड़ना की व्यवस्था रहेगी। चौथा, अध्यापक मूल्यांकन की समग्र खुली सहानुभूति सहभागिता युक्त प्रदत्त अधिकारी प्रणाली स्थापित की जाएगी। उच्च पदों पर चयन व प्रोन्नति के लिए इन मूल्यांकनों को आधार माना जाएगा। उपयुक्त स्तर पर शिक्षकों के कार्य एवं व्यावसायिक विकास का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करके प्रोन्नत करने की व्यवस्था की जाएगी। पांचवा, शिक्षकों के वेतन एवं भत्ते योग्यता तथा सामाजिक एवं व्यावसायिक दायित्वों के अनुरूप तय किए जाएंगे, असमानताएं दूर की जाएंगी। छठवां, शिक्षक अपनी नियुक्ति स्थान पर नियमित उपस्थिति एवं समय सारणी के अनुरूप शिक्षण कार्य हेतु बाध्य होंगे। सातवां, निजी एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षकों के शोषण की प्रवृत्ति समाप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। आठवां, सेवानिवृत्ति चिकित्सकीय एवं आवासीय सुविधाओं के लाभ सभी स्तरों के सभी शिक्षकों को ग्रामीण एवं शहरी हर प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे। नौवा, केंद्रीय सरकार की सामान्य सलाह चयन प्रणाली में योग्यता वस्तु निष्ठता व व्यावहारिकता वांछनीयता को महत्व देकर सुधारा जाएगा। दसवां, अध्यापकों के व्यवसाय प्रतिकूल आचरण तथा नशे की स्थिति में विद्यालय आना, विद्यार्थियों के प्रति अशिष्ट भाषा व्यवहार, महिला विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार, विद्यार्थियों को निजी ट्यूशन तथा चाटुकारिता के लिए प्रेरित करना आदि पर प्रतिबंध होगा। ग्यारहवां, सुयोग्य व्यक्तियों को संस्था प्रधान बनाने और अयोग्य सिद्ध हुए व्यक्तियों को हटाने की व्यवस्था को व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। 12वां, शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। 13वां, महिला शिक्षकों को उनके पति के नियुक्ति स्थान पर नियुक्त किए जाने मातृत्व अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 14वां, शिक्षक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए देशव्यापी व्यावहारिक कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। 15वां, रेगिस्तानी पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 16वां, सेवारत शिक्षकों की शिक्षा और सतत शिक्षा का दायित्व प्रांतीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों SCERTS को सही होगा। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर सेवारत शिक्षकों के अभिनव एवं प्रशिक्षण का कार्य जिला शिक्षा संस्थान यानी कि डाइट्स देखेंगे। दूरगामी शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन कार्यक्रमों की सहायता से भी इन कार्यक्रमों को समृद्ध किया जाएगा। सतत शिक्षा के लिए पूरे वेतन पर दीर्घकालीन अध्ययन अवकाश की सुविधा उपलब्ध रहेगी। व्यावसायिक योग्यता में विकास के अवसर पर्याप्त मात्रा में दिए जाएंगे। 17वां, केंद्रीय तथा प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्डों, जिलों शिक्षा बोर्डों तथा ग्राम शैक्षिक समितियों में शिक्षकों का सहभागित्व होगा। 18वां, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता शिक्षकों की राष्ट्रीय परिषदों व सरकार मिलकर तैयार करेंगे तथा अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा। 19वां, शिक्षकों में औपचारिक के साथ अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र में योगदान अपेक्षित होगा। 20वां, शिक्षकों के कल्याण के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर टीचर्स वेलफेयर के क्रियाकलापों का विस्तार करके इसे प्रभावी बनाया जाएगा। अधिगम अभ्यास लर्निंग एक्सरसाइज। पहला, प्राचार्य की भूमिका का अर्थ बताइए। प्राचार्य उत्तरदायित्व एवं भूमिका के अंतर उदाहरणों से बताइए। दूसरा, प्राचार्य की भूमिकाओं का विवरण दीजिए। भूमिकाओं और कार्यों में अंतर समझाइए। तीसरा, शिक्षक की भूमिकाओं तथा कार्यों को बताइए और उत्तरदायित्वों का भी उल्लेख कीजिए। चौथा, राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार शिक्षक तथा प्राचार्य की भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। 5वां, अक्सर शिक्षक की 3 भूमिकाओं का उल्लेख किया जाता है, दार्शनिक, निर्देशन तथा मित्र। इस कथन का विवेचन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला, प्राचार्य की प्रमुख कार्य बताइए। दूसरा, प्राचार्य की भूमिकाओं को गिनवाइए। तीसरा, शिक्षक की भूमिकाओं को भी दीजिए। चौथा, शिक्षक के उत्तरदायित्वों को बताइए। 5वां, प्राचार्य की जवाबदेही का अर्थ समझाइए। सत्य असत्य प्रश्न ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। पहला, प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य सचिव होता है, सत्य या असत्य। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक प्राचार्य प्रशासक होता है, सत्य या असत्य। तीसरा, बोर्ड की परीक्षा में प्राचार्य परीक्षक अधीक्षक होता है, सत्य या असत्य। चौथा, निर्देशन सेवाओं में प्राचार्य निदेशक होता है, सत्य या असत्य। 5वां, शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक तथा मित्र की होती है, सत्य या असत्य। कुंजी, पहले के लिए सत्य, दूसरे के लिए सत्य, तीसरे के लिए सत्य, चौथे के लिए सत्य और 5वें के लिए भी सत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला, विद्यालय के संचालन का केंद्र रिक्त स्थान होता है। दूसरा, कक्षा शिक्षण की अंतःक्रिया का केंद्र रिक्त स्थान होता है। तीसरा, प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य रिक्त स्थान होता है। चौथा, बोर्ड परीक्षा का अधीक्षक रिक्त स्थान होता है। 5वां, कक्षा शिक्षण में अहम भूमिका रिक्त स्थान की होती है। कुंजी, पहले के लिए प्राचार्य, दूसरे के लिए शिक्षक, तीसरे के लिए सचिव, चौथे के लिए प्राचार्य, 5वें के लिए शिक्षक। बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला, विद्यालय संचालन में प्राचार्य को अ, भूमिका निर्वाह करना, ब, उत्तरदायित्व होना, स, जवाब देना होता, स, उपरोक्त सभी। दूसरा, शिक्षक की भूमिका होती है अ, एक मित्र की, ब, एक निर्देशक की, स, एक दार्शनिक की, द, एक उपरोक्त सभी की। तीसरा, प्राचार्य की भूमिका होती है अ, एक प्रशासक की, ब, परीक्षा अधीक्षक की, स, निर्देशक की, द, उपरोक्त सभी। चौथा, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ाना अ, प्राचार्य की भूमिका, ब, प्राचार्य का उत्तरदायित्व, स, प्राचार्य के कार्य, द, प्राचार्य की जवाबदेही। 5वां, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना अ शिक्षक की भूमिका है, ब उत्तरदायित्व है, स जवाबदेही है, द शिक्षक का कार्य है। कुंजी, पहले के लिए द, दूसरे के लिए द, तीसरे के लिए द, चौथे के लिए द और पांचवे के लिए ब।